नमस्कार, मैं शैलेंद्र भारती आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज आपको सुनाने के लिए आया हूं शिव पुराण से एक और कहानी जिसका शीर्षक है हनुमान अवतार। प्रिय मित्रों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं, पर क्या आप ये जानते हैं कि वो क्या कारण था कि शिव शंकर को एक वानर के रूप में अवतार लेना पड़ा? शिव पुराण की हमारी आज की कथा इसी बात पर प्रकाश डाल रही है कि जब ईश्वर किसी पुण्य काम में लग जाते हैं तो हर कोई किसी न किसी रूप में आके उनकी सहायता करना ही चाहता है। और ये नियम क्या ईश्वर तक ही सीमित है? ना, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप भी कभी किसी पुण्य के कार्य में लग के देखिएगा, निस्वार्थ भाव से, बिना किसी सेल्फिश रीजन के किसी अच्छे काम को जब आप करने लगेंगे तो देखेंगे कि कैसे लोग आपके साथ जुड़ते ही जा रहे हैं। वो जो हजारों साल पहले तब हुआ था वो आज भी किसी न किसी रूप में होता ही है। तो आइए जानते हैं शिव पुराण से हनुमान अवतार की कथा। अंजनी सुत, पवन पुत्र, केसरी नंदन, ऐसे कितने ही नामों से हनुमान जाने जाते हैं, पर वो सबसे अधिक जाने जाते हैं अपनी अनंत सेवा और अपनी भक्ति के लिए। हनुमान से बड़ा सेवक, उनसे बड़ा भक्त ना तो धरती पर हुआ है और ना कभी होगा। वैसे तो शास्त्रों में राम भक्त हनुमान की दो तिथियों का उल्लेख मिलता है। आज हम उनके रुद्रावतार की बात कर रहे हैं दोस्तों। इसका कारण था एक अति पुरानी बात। किसी समय में शिवजी ने विष्णु जी से दास होने का वरदान प्राप्त किया था। ये वरदान तभी फलीभूत हो सकता था जब शिवजी अवतार लेते, वरना अपने शिव या प्रभु के रूप में कैसे वो दास कर्म को निभाते? बात उस काल की है जब राम जी की आयु कुछ 5 वर्ष की हो गई थी। तब शिव जी की प्रबल इच्छा हुई कि वो धरती पर जाकर राम जी के दर्शन करें। शिव अपने वास्तविक रूप में तो जा नहीं सकते थे, तो पास ही में खड़ी माता पार्वती से वो अचानक बोले, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और मुझे उनके दर्शन की सेवा का मन हुआ है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहां से चला जाऊं और राम के लोक में ही रहूं। पर ऐसा कैसे हो सकता था? शिवजी पार्वती जी को छोड़कर कैसे जाते? फिर पार्वती जी का क्या होता? ऐसा सुनते ही पार्वती जी व्याकुल हो गई। शिवजी ने धैर्य से उन्हें समझाते हुए अपनी रुद्राक्ष माला दिखाई और बोले कि इसमें जो 11वां रुद्राक्ष है, यही रुद्राक्ष आज एक वानर के रूप में अवतरित होने जा रहा है। मुझे अपना दास्यता कर्म भी तो पूरा करना है, तो धरती पर मेरा ये रूप जन्म लेगा, पर राम के बाल रूप को देखने की इच्छा को मैं रोक नहीं पा रहा, तो अभी के लिए मैं एक मदारी के रूप में राम को देखने जा रहा हूं। अपने दास कर्म को निभाने के लिए शिवजी ने एक वानर यानी कि महान हनुमान के रूप में मां अंजनी के गर्भ से जन्म लिया, पर अपनी इच्छा को महादेव भी रोक नहीं पाए। राम के बाल रूप को तो उन्होंने देखना ही था, इसलिए एक मदारी बनकर वो राम को यानी के विष्णु के अवतार को देखने के लिए धरती पर आए। एक मदारी को अयोध्या के राजमहल में एंट्री की अनुमति कैसे मिलती? तो ये मदारी जी अपने बंदर के साथ खेल रचाने लगे। मदारी डमरू बजा रहा था और बंदर डमरू की थाप पर नृत्य कर रहा था। कई जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि ये नाचने वाला बंदर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान ही थे। तो मदारी और बंदर की बात जब बालक राम तक पहुंची तो वो भी आ गए इस खेल को देखने। उस समय विष्णु और शिव और उनके धरती रूप आमने सामने थे। दोस्तों, ये तो एक छोटी सी घटना थी। कथा की मुख्य बात है विष्णु जी से मिले अपने दास्यता वरदान के लिए रुद्रावतार का धरती पर आना। आप दास कर्म को समझिए। ईश्वर धरती पर अवतार क्यों लेते हैं? अपने भक्तों के लिए। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है तो उसे हल्का करने के लिए भगवान को आना ही पड़ता है। यहां पर यह बात भी है कि भगवान जो काम करने के लिए आते हैं तो आसान नहीं होता। शिव जानते थे कि विष्णु जो काम करने के लिए धरती पर राम बन के जा रहे हैं वो बहुत ही कठिन काम था। कई भयानक राक्षसों के अलावा उन्होंने रावण का वध भी करना है। ऐसे में राम को जितनी भी सहायता की आवश्यकता पड़ने वाली थी वो कम पड़ती। इसलिए हर देवता ने अपने अपने रूप में अपने अपने तरीके से राम की सहायता करने की कोशिश की थी। पर जो हनुमान ने किया था, क्या वो और कोई कर सकता था? कई विद्वान ऐसा भी कहते हैं कि शिवजी ये जानते थे कि कलयुग में ना वे होंगे और ना ही राम, ना कोई अवतार भी नहीं होगा। इसीलिए शिव ने अपने ऐसे शक्तिशाली रूप को जन्म दिया जो कलयुग में अजर और अमर हो। यह मान्यता है कि हनुमान जी आज भी हमारे बीच में कहीं हैं। शिव अनादि, विदाउट बिगिनिंग, अजन्मा, विदाउट बर्थ हैं। तो उनका ऐसा शक्तिशाली रूप भी धरती छोड़ के कैसे जा सकता है? तो दोस्तों, यह थी कहानी हनुमान जी की, यानी कि शिव जी के रुद्र अंश की, धरती पर जन्म लेने की। लेकिन इस कथा का आज हमारे लिए क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? वैसे हनुमान भक्त बनकर के तो धरती पर आए थे, पर वो शिवजी के रूप थे, रुद्रावतार। वो तब भी थे और आज भी हैं, इसीलिए उन्हें चिरंजीवी कहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने सच्चे भक्तों की सहायता के लिए वो न आए। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, अपने स्वार्थ के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव के लिए उन्हें याद करेंगे तो उसका फल केवल आपके कर्मों के आधार पर होगा। परंतु यदि आप कोई ऐसा काम चुनते हैं जिसमें सबका भला हो, when it is for the benefit for all, तो हनुमान जी को, शिव जी को, विष्णु को या राम को हरदम आप अपने साथ ही पाएंगे। यही बात इस कहानी में बताई गई है कि राम का आना जैसे एक यज्ञ था, सर्वसाधारण, पब्लिक एट लार्ज की भलाई के लिए। तो जब विष्णु रूप में राम जी धरती पर आए तो सब भगवान, सब देवता अपने अपने तरीके से उनके इस यज्ञ में अपने योगदान की आहुति देने लगे। आप भी जब कुछ ऐसा करेंगे जिसमें दूसरों की भलाई है तो वैसे ही भगवान और उनके रूपों को आपकी सहायता करते हुए पाएंगे। अरे, अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए जब आप करते हैं तो सारे भगवान आपके साथ होते हैं। और ऐसे काम आसान नहीं होते, पर जब भगवान साथ हैं तो फिर चिंता की कोई बात नहीं रह जाती। दोस्तों, आशा करता हूं इस कहानी के द्वारा आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा, आपके कर्म और आपका समर्पण भाव भगवान के चरणों में निरंतर बना रहेगा। इसी आशा के साथ मैं शैलेंद्र भारती आपसे आज्ञा लेता हूं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।